प्रणाली की वजह से ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई थी जिन्हें अभिमन्यु और ऋषिका चाहकर भी नहीं संभाल पा रहे थे। अभिमन्यु प्रणाली के एहसान के चलते बंधा हुआ था, इस वजह से ऋषिका काफी कुछ भुगत रही थी। ऋषिका नहीं चाहती थी कि अभिमन्यु उसके चक्कर में प्रणाली को लेकर किसी तरह के गिल्ट में रहे, इसलिए उसने तलाक मांग लिया था। कल की रात अभिमन्यु और ऋषिका दोनों के लिए ही काफी भारी बीती थी। सुबह होते ही दोनों तैयार होकर कोर्ट जाने के लिए निकल गए। वहीं निवेदिता ने उनकी बातें सुनी तो उसने जाकर सब कुछ वसुधा को बता दिया। अभिमन्यु और ऋषिका के तलाक लेने की बात सुनकर वसुधा को झटका सा लगा। वसुधा ने गहरी सांस ली और खुद को मजबूत करके कहा, मैं बार बार ऋषिका को मजबूर नहीं कर सकती हूँ निवेदिता, इस बार उस लड़के ने सच में उसे काफी निराश किया है और उसे भी अपनी खुशियां चुनने का हक है। निवेदिता को लगा कि वसुधा इस मामले में कुछ करेगी, लेकिन उनके इस मामले में पीछे हटने पर निवेदिता ने हैरानी से कहा, लेकिन दादी ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। ऋषिका मैडम एक बहुत अच्छी पत्नी है और सर उनसे प्यार भी करते हैं। अगर वे दोनों अलग हुए तो पछताने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। मिस्टर राजवंश को ऋषिका जैसी लड़की वापस नहीं मिलेगी। वसुधा को अंदर ही अंदर बुरा तो बहुत लग रहा था, पर वो बार बार अभिमन्यु का साथ देकर ऋषिका के साथ भी नाइंसाफी नहीं करना चाहती थी। उन्होंने भारी मन से कहा, जाने देते हैं, बच्चों का मामला है, वे खुद निपटा लेंगे। वसुधा इस बारे में आगे बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपने कमरे में चली गईं। बिस्तर पर लेटते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सिसकते हुए कहा, उस लड़के को जिंदगी में मेरे अलावा कोई सच्चा प्यार करने वाला मिला था, अफसोस है कि वो उसे भी खो रहा है। वहीं ऋषिका अभिमन्यु के साथ पार्किंग लॉट में आई। वे गाड़ी में बैठकर बाहर जाने लगे। इस वक्त कुरियर वाला ड्राइवर के साथ राजवंश विला पहुंचा। अभिमन्यु ने एक नज़र गाड़ी की तरफ देखा, दिग्विजय की गाड़ी वापस आई थी। ये देखकर उसे हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो अक्सर वसुधा के लिए कुछ न कुछ भिजवाते रहते थे। वहीं अभिमन्यु की गाड़ी बाहर निकलने के बाद ड्राइवर की गाड़ी अंदर गई। उसने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, क्या वो मिस्टर अभिमन्यु राजवंश की गाड़ी थी जो अभी अभी बाहर गई थी? हाँ, सिक्योरिटी गार्ड ने सिर हिलाकर जवाब दिया। अरे नहीं, मैं उनके लिए यहाँ कुछ डिलीवर करने के लिए लाया था जो खास उन्हीं के हाथ में देना था। अब वे यहाँ से चले गए हैं तो मैं उन्हें कैसे दूंगा? क्या आप जानते हो वे कहाँ गए हैं? ड्राइवर ने हल्की घबराहट के साथ कहा। मैं कैसे बता सकता हूँ सर कहाँ जाएंगे? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। ड्राइवर समझ गया था कि सिक्योरिटी गार्ड के साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं। वो पार्सल लेकर वसुधा के विला की तरफ जाने लगा। उसके पीछे डिलीवरी वाले ने भी जाने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे वहीं पर रोक लिया था। डिलीवरी वाले ने तुरंत ऋषिका को मैसेज लिखते हुए कहा, मैडम मैंने आपका पार्सल पहुंचा दिया है, लेकिन आपने जिस घमंडी बंदर के लिए पार्सल भेजा था वो उस विलेज में नहीं बल्कि गोवा में रहता है। उसका घर भी बहुत बड़ा है, बिल्कुल किसी महल की तरह। वो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम वापस आ जाओ, पार्सल उन तक पहुंच ही जाएगा, ऋषिका ने जवाब में लिखा। वैसे भी उसने अपनी तरफ से अंगूठी और लेटर भेज दिया था तो उसे आगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। डिलीवरी वाले को जवाब देने के बाद ऋषिका ने मन ही मन कहा, मैंने अपना मोबाइल नंबर उस लेटर के साथ छोड़े हैं, उस लेटर मिलते ही पक्का वो मुझे कॉल करेगा। ऋषिका ने उसके ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया था। फिर उसकी नज़र अभिमन्यु की तरफ पड़ी जो सिर झुकाकर बैठा था। इतनी देर में उसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहा था। उसके चेहरे के भाव भी काफी सख्त थे। थोड़ी ही देर में वे कोर्ट पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही ऋषिका ने अभिमन्यु से कहा, हम टाइम पर पहुंच गए हैं, हमें अंदर जाना चाहिए। ऋषिका के कहने के बावजूद अभिमन्यु अपनी जगह से हिला तक नहीं। ऋषिका ने सोचा कि उसके गाड़ी से बाहर आने के बाद अभिमन्यु भी उतर जाएगा। वो गाड़ी से बाहर आ गई, लेकिन एक मिनट के बाद भी अभिमन्यु गाड़ी से बाहर नहीं उतरा था। ऋषिका ने विंडो पर नॉक किया तो जैसे अभिमन्यु अपने ख्यालों से बाहर आया और इसी के साथ वो गाड़ी से बाहर उतर गया था। ऋषिका अभिमन्यु को कुछ बोल नहीं रही थी क्योंकि अभी कुछ भी कहना अभिमन्यु के मूड को और अपसेट करना था। वो बिना कुछ बोले अंदर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसने महसूस किया कि अभिमन्यु अभी भी बाहर खड़ा दरवाजे को देख रहा है। वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वहां पहली बार आया हो। ऋषिका वापस अभिमन्यु के पास गई और हल्की सख्ती से बोली, क्या हुआ, तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? हम आज डिवोर्स नहीं ले सकते हैं, अभिमन्यु बोला। उसकी बात सुनकर ऋषिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्यों, कुछ हुआ है क्या? ऋषिका को लगा कि अभिमन्यु ने खुद को सख्त कर लिया था कि वो प्रणाली को मरने देगा, लेकिन ऋषिका का साथ नहीं छोड़ेगा। अभिमन्यु ने ऋषिका की आंखों में देखा और बेपरवाही से कहा, मैं हमारा मैरिज सर्टिफिकेट लाना भूल गया, उसके बिना तो तलाक नहीं हो सकता ना। अभिमन्यु का बहाना बहुत ही बेकार सा था। ऋषिका ने उसकी तरफ देखकर सिर हिलाकर कहा, ठीक है, वापस घर चलते हैं और सर्टिफिकेट ले आते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, अभिमन्यु ने जवाब दिया। ठीक है, तुम मीटिंग अटेंड कर लो, ये तो इवनिंग तक खुला रहता है, हम आफ्टरनून को आ जाएंगे, ऋषिका ने बीच का रास्ता निकालते हुए कहा। आफ्टरनून के बाद भी मुझे टाइम नहीं है, मुझे एक सेमिनार अटेंड करने जाना है, अभिमन्यु ने कंधे उचकाकर कहा। ऋषिका ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर हल्का मुस्कुराते हुए बोली, अभिमन्यु राजवंश, पता है इस वक्त तुम कैसा बिहेव कर रहे हो? अभिमन्यु उससे नजरें चुराने लगा था। उसने धीरे से कहा,
मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो। तुम उस बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है जो गुस्से में जानबूझकर बुरा बर्ताव कर रहा है। तुम पहले मेरे साथ रूड बिहेव करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दिखावा करना बंद करो, इशिका ने जवाब दिया। अभिमन्यू ने इशिका की आंखों में देखा और भारी आवाज में कहा, अगर मैं गुस्से में आ जाऊं और तुम्हारे साथ पहले की तरह बिहेव करने लगूं, तो क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम भी जानते हो कि मैंने यह डिसीजन क्यों लिया है, इसलिए मैं पीछे नहीं हटने वाली, इशिका ने जवाब दिया। वो अभिमन्यु को समझाने के लिए उसके पास आई और आगे बोली, अभिमन्यु, अगर हमने डिवोर्स नहीं लिया और हम प्रणाली के ठीक होने का इंतजार करते रहे, तो क्या गारंटी है कि वो ठीक हो जाएगी? पिछले 4 साल में जो लड़की इतने ट्रीटमेंट के बाद सही नहीं हुई, वो अचानक से कैसे ठीक हो सकती है? वो तुम्हें बार बार मिलने को बुलाती रहेगी और तुमने मना किया तो वो सुसाइड कर लेगी। ऐसे कब तक तुम उसके और मेरे बीच में सब कुछ बैलेंस करते रहोगे? मुझे नहीं अच्छा लगता है जब तुम मुझे छोड़कर उसके पास जाते हो। अभिमन्यु पूरी तरह फंस चुका था। डॉक्टर ने भी उसे यही कहा था कि उसे प्रणाली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ही पड़ेगी, वरना वो फिर से मरने की कोशिश करेगी। उसका इस तरह बार बार प्रणाली के पास जाना इशिका को बहुत बुरा लग रहा था, ये भी वो महसूस कर पा रहा था। अभिमन्यु ने एक नज़र इशिका की तरफ देखा। उसे लगा कि अगर उन दोनों का तलाक हो गया तो वो कभी इशिका को नहीं देख पाएगा। उसने खुद को सख्त किया और कहा, मेरे पास आज सच में टाइम नहीं है इशिका, हम कल आ जाएंगे ना? इशिका उसके साथ और बहस नहीं करना चाहती थी। अभिमन्यु की आवाज़ से साफ जाहिर हो रहा था कि वो कितनी तकलीफ में है। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। अभिमन्यु के चेहरे पर राहत के भाव थे। एक दिन के लिए ही सही, उसने इशिका को अपने पास रोक लिया था। उसने इशिका को अपनी गाड़ी की तरफ इशारा करके कहा, तुम घर चली जाओ, मैं गार्ड्स की गाड़ी में चला जाऊंगा। हम दोनों तलाक ले रहे हैं अभिमन्यु, मुझे इस वक्त राजवंश हाउस जाना ठीक नहीं लग रहा है, इशिका ने जवाब दिया।
इशिका की बात सुनकर इशिका को एक और झटका लगा। वो उसे रोकना चाहता था, पर बिना कुछ बोले गुस्से में अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया था। अभिमन्यु ने तुरंत वहां से गाड़ी हटाने को कहा। वहीं इशिका उसे जाते हुए देख रही थी। उसे अभिमन्यु के लिए बहुत बुरा लग रहा था। ये बेवजह इतना स्ट्रेस ले रहा है। इतने दिनों तक तो इसे फर्क तक नहीं पड़ता था कि इसकी शादी मुझसे हुई है, और अब अलग होने के नाम पर बच्चों की तरह गुस्सा कर रहा है। प्रणाली की इस हालत में अभिमन्यु चाहकर भी उसे नहीं छोड़ सकता, और कोई गारंटी नहीं कि प्रणाली कब तक ठीक होगी। क्या ऐसे ही मैं अभिमन्यु को किसी और के साथ बांटती रहूंगी? ऐसा ही है तो कम से कम इसे तो इस रिश्ते से आज़ाद करके सुकून से जी लेने देती हूँ, इशिका ने नम आंखों से कहा। उसने तुरंत ही खुद को संभाला और फिर टैक्सी लेकर सिंघानिया हाउस जाने के लिए निकल गई। इशिका जैसे ही सिंघानिया हाउस पहुंची, उसने आदर्श और राधिका को बातें करते हुए सुना। हालांकि उन्होंने न्यूज़ को दबा दिया था, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग इस बारे में जान चुके थे। आदर्श ने राधिका से कहा, राधिका, अगर तुम्हें उसकी इतनी ही टेंशन हो रही है तो उसे कॉल करके पूछ लो ना सब ठीक है या नहीं, न्यूज़ वाले वैसे भी झूठी खबरें फैलाते रहते हैं। राधिका ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, मैंने उसे कॉल किया तो वो परेशान हो जाएगी। उनकी बातों से इशिका समझ गई थी कि उन्होंने भी न्यूज़ देख ली है। उसने गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोला। इशिका को अचानक अपने सामने देखकर राधिका ने चौंकते हुए कहा, इशिका, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, मैंने और अभिमन्यु ने डिवोर्स लेने का फैसला किया है, इशिका ने बिना कुछ छुपाए सीधे सीधे कहा। इशिका ने जैसे ही तलाक लेने की बात बताई, आदर्श तुरंत बोला, ये सब बकवास है, तुम इस तरह आसानी से उसे तलाक नहीं ले सकती हो। वो तुम्हारा पति है, और एक शादी का मतलब सिर्फ साथ रहना ही नहीं होता, प्रॉब्लम्स का सामना करना भी होता है। दोनों मिलकर सबका सामना करोगे तो मुसीबत अपने आप हल हो जाएगी। इशिका हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी, क्योंकि ये पहली बार होगा जब आदर्श ने उस पर हक जमाते हुए कुछ कहा था। आदर्श ने इशिका से बात करने के बाद राधिका से कहा, राधिका, तुम ही समझाओ अब इसे, ये बेवकूफ़ी भरा डिसीजन नहीं ले सकती है। राधिका ने एक नज़र इशिका की आंखों में देखा, वो उसकी हालत समझ सकती थी। उसने सिर हिलाकर कहा, तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं उसमें कोई दखल नहीं दूंगी, ये घर तुम्हारा है और तुम यहाँ कभी भी रहने के लिए आ सकती हो। उसकी बात सुनकर आदर्श हैरान रह गया। वो कुछ पूछता उससे पहले ही राधिका ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, जानती हूँ कि शादी का रिश्ता पति पत्नी के साथ रहने जितना ही नहीं होता, मुसीबत में साथ खड़े रहना भी होता है, पर बात सिर्फ पति पत्नी की नहीं है, यहाँ तीसरी औरत इनके बीच में आई है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी तरह के रिलेशन के ट्रायंगल में फंस कर रहे। राधिका ने अपना फैसला सुनाने के बाद इशिका की तरफ देखकर कहा, इशिका, मुझे तुम्हारे फैसले का सम्मान है, ऊपर का कमरा तैयार नहीं हुआ है, इस वजह से तुम मेरे साथ मेरे रूम में रहोगी। राधिका की बातें सुनकर आदर्श के चेहरे का रंग उड़ गया था। राधिका हमेशा से स्ट्रांग पर्सनालिटी वाली महिला रही थी, जिसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट ही सब कुछ था, तो वो अब तक मालविका को क्यों झेल रही थी? तुरंत ही आदर्श को सब समझ आ गया था। आदर्श के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट थी। उसने धीरे से कहा, तो तुम्हें कभी मुझसे प्यार हुआ ही नहीं था, मालविका यहाँ रहती थी, तुम्हें फर्क नहीं पड़ा क्योंकि तुम्हें तो मुझसे प्यार ही नहीं था। आदर्श के चेहरे के भावों को राधिका और इशिका दोनों ने ही नोटिस नहीं किया था। राधिका ने इशिका का हाथ पकड़ा और उसे ले जाते हुए बोली, आज से पहले हम दोनों कभी एक साथ नहीं रहे हैं, देखना बचपन में तुमने जो भी मिस किया था वो धीरे धीरे तुम्हें सब मिलने वाला है, उसमें पहली चीज ये होगी कि आज तुम अपनी माँ के साथ सोने वाली हो। हाँ बिल्कुल,
इशिका ने मुस्कुराकर कहा। अभिमन्यु से अलग होने के दर्द पर राधिका का प्यार उसके जख्मों पर मलहम जैसा था। ऊपर जाते हुए इशिका ने अचानक कहा, अच्छा मॉम, मुझे लंच में वही करी और पास्ता खाना है जो आप बचपन में आयशा के लिए बनाती थीं। उसकी बात सुनकर राधिका हंसते हुए बोली, पागल लड़की, तुम्हें पता है मुझे कुकिंग करनी नहीं आती और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता था। राधिका ने एक अच्छी माँ और पत्नी होने के लिए कुकिंग करने की कोशिश की थी। उसने कभी कभार कुछ बनाया था लेकिन वो अच्छा नहीं बना था। आयशा ने तो उसे ठीक से टेस्ट तक नहीं किया था लेकिन इशिका को वो अच्छा लगता था। मालविका ने तो कभी उसके लिए कुछ बनाया तो दूर की बात, उसे ठीक से खाना तक नहीं दिया था। राधिका के इतना कहने के बावजूद इशिका ने जिद करते हुए कहा, लेकिन मुझे वही खाना है। अच्छा ठीक है, बना दूंगी, राधिका ने जवाब दिया। पूरा दिन राधिका और इशिका का एक साथ में बीता था। पिछले 23 सालों की भरपाई इसे एक दिन में हो गई थी, जहां राधिका ने इशिका का मनपसंद खाना बनाया, दोनों ने साथ में मूवी देखी, बहुत सारी बातें की। रात को इशिका राधिका के साथ सोने के लिए जा रही थी, तभी उसके नंबर पर एक मैसेज रिसीव हुआ। उसने मैसेज को खोलकर देखा तो वो एक अननोन नंबर से मैसेज था। अभिमन्यु से तलाक मत लो, मैसेज में काफी रहस्यमय तरीके से लिखा हुआ था, जिसे देखकर इशिका चौंक गई थी।